नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर देश के पश्चिमी हिस्से में चुनाव प्रचार के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान शुक्रवार को गोली चलाई गई। गंभीर रूप से घायल आबे को विमान से एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस समय उनकी सांस नहीं चल रही थी और हृदय गति रुक गई थी। स्थानीय दमकल विभाग के अधिकारी मकोतो मोरीमोतो ने बताया कि आबे को गोली लगने के बाद दिल का दौरा पड़ा या CPA हुआ। मोरीमोतो के अनुसार इसका मतलब है कि विमान से एक प्रांतीय अस्पताल तक ले जाते समय आबे की सांस नहीं चल रही थी और हृदय गति रुक गई थी। मुख्य कैबिनेट मंत्री हिरोकाजो मात्सुनो ने पत्रकार को बताया कि पुलिस ने नारा में घटनास्थल से एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। सरकारी प्रसारणकर्ता NHK ने घटना का एक फुटेज प्रसारित किया, जिसमें आबे को सड़क पर गिरते हुए और कई सुरक्षा कर्मियों को उनकी ओर भागते हुए देखा जा सकता है। आबे जब जमीन पर गिरे तो उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और खून बह रहा था। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बृहस्पतिवार को पहली उच्च स्तरीय EU-UN वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि विशेष रूप से ऐसे समय में मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है, जब यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। EU के कार्यकारी अंग यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने न्यूयॉर्क के लांग प्रायद्वीप में स्थित ग्रीन ट्री एस्टेट में वार्ता शुरू होने से पहले कहा कि एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि दुनिया एक अहम मोड़ पर है और संयुक्त राष्ट्र के तहत चलने वाली वैश्विक व्यवस्था दांव पर लगी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि COVID-19 महामारी, नाटकीय जलवायु आपातकाल और कई संघर्षों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। गुतारेस ने विशेष रूप से यूक्रेन में रूसी आक्रमण के नाटकीय प्रभाव का हवाला दिया, जिसके चलते भयावह खाद्य, ऊर्जा और वित्तीय संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि केवल बहुपक्षवाद ही नहीं, बल्कि समय को देखते हुए बहुपक्षवाद के एक नेटवर्क की जरूरत है। गुतारेस ने कहा कि EU-UN साझेदारी इस बहुपक्षवाद नेटवर्क का एक मूलभूत स्तंभ है। वोन डेर लेन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को भारत को दंडात्मक CATSA प्रतिबंधों से छूट दिलाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने दलील दी कि इससे अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत होंगे। वर्ष 2017 में लाए गए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट CATSA में रूस से रक्षा और खुफिया लेनदेन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई प्रावधान है। अक्टूबर 2018 में भारत ने तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अनुबंध पर आगे बढ़ने पर भारत पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद खन्ना द्वारा पेश किए गए विधेयक में कहा गया, एक ओर भारत को रूस निर्मित अपनी भारी हथियार प्रणालियों को बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता है, तो दूसरी ओर इस संक्रमण काल के दौरान रूस और चीन की करीबी साझेदारी के आलोक में आक्रामकता को रोकने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट CATSA के तहत प्रतिबंधों में छूट दिया जाना अमेरिका और अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी के सर्वोत्तम हित में है। इंडोनेशिया के बाली प्रायद्वीप में दुनिया के अमीर एवं विकसित देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जारी है। इस दौरान यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतहीन गरीबी और कोरोना वायरस महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर तीखे मतभेद दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को शुरू हुई G20 समूह की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। इसी साल नवंबर में ही G20 समूह का शिखर सम्मेलन होना है। हालांकि इससे पहले बृहस्पतिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की घोषणा से वार्ता को तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है। जॉनसन की विदाई से रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के प्रयासों को कोई नुकसान भले न हो, लेकिन चीन और रूस इसे G20 समूह कमजोरी के संकेत के तौर पर देखेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्री फिलहाल बाली में मौजूद हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे बाली वार्ता के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ता का एजेंडा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण दुनिया के सामने पैदा हुए खाद्य एवं ऊर्जा संकट पर बात करना, इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराना और भविष्य में ऐसी किल्लत को मिलकर निपटने के मुद्दे पर बात करना है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने अगले सप्ताह क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा समन्वय पर चर्चा करने के लिए वेस्ट बैंक में बृहस्पतिवार को मुलाकात की। एक दशक से अधिक समय पहले शांति प्रक्रिया रुकने के बाद से इसराइल और फिलिस्तीनी नेताओं के बीच उच्च स्तरीय बैठकें विरले होती हैं। इसराइल ने एक बयान में कहा कि रामल्ला में बैठक सकारात्मक माहौल में की गई। रामल्ला में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।